परम पूज्य गणनीय प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। धर्म प्रेमी हो रही है, आप सब तैयार हो जाइएगा। गोमठ सार जीव कांड सार का स्वाध्याय अध्ययन चल रहा है और मंगलाचरण के साथ उसको कंटिन्यूअस करते हैं। सिद्धम शुद्धम पणमीय जिनिंद वर्णेमि चंद मकरंकम गुणरयण भूषणोदयम जीवस्य पर्वणम वोच्छम। मंगलाचरण के पश्चात 20 प्ररूपणाओं के अंतर्गत प्रथम प्ररूपणा गुण स्थान का वर्णन काफी दूर तक हम ले आए हैं और आज इस अध्याय का अंतिम श्लोक अंतिम गाथा है, जिसके पश्चात आपको दूसरे अध्याय में प्रवेश कराएंगे। तो पेज नंबर 22 पर गाथा नंबर है 26, यानी गुणस्थानों से रहित जो हो गए वे सिद्ध भगवान कैसे होते हैं उनका लक्षण दिया है। अट्ठवियकम्मवियला सीधी भूदानि रंजनानि च
अट्टगुणाकिदकिच्चा
लोयगणिवासिनो सिद्धा। सामूहिक गाथा बोलेंगे।
अट्टवियकम्मवियला सीधी भूदानि रंजनानि च अट्टगुणाकिदकिच्चा लोयगणिवासिनो सिद्धा।
गुणों की एक एक सीढ़ियों को चढ़ते हुए जिन्होंने 14 गुण स्थान पार कर लिए, ऐसे सिद्ध भगवान गुणस्थानातीत कहलाते हैं। अष्टविध कर्म विकला सीती भूता निरंजना नित्या अष्टगुणाकृत कृत्या लोकाग्र निवासिन सिद्धा। अठविय कर्म विकला अष्टविध कर्म विकला माने 8 प्रकार के जो कर्म हैं उनसे विकल माने रहित जो हो गए। 8 प्रकार के कर्म तो मालूम है आपको, ज्ञानावरण दर्शनावरण वेदनीय मोहनीय आयु नाम गोत्र और अंतराय, ये 8 प्रकार के कर्म हैं और इनके उत्तर भेद जब करते हैं 148 कर्म प्रकृतियां हो जाती हैं और असंख्यात जीवों की अपेक्षा उनके असंख्यात भावों की अपेक्षा असंख्यात लोक प्रमाण भेद भी कर्म के हो जाते हैं। लेकिन मूल 8 कर्म हैं। उन 8 कर्मों को जिन्होंने नष्ट कर दिया उससे रहित हो गए। अनंत सुख रूपी अमृत के अनुभव करने वाले शांतिमय हैं। शीति भूता एकदम शीतल हो गए, निरंजन हो गए, कर्म रूपी अंजन से काली मां से रहित हो गए। नित्या जो नित्य हमेशा शाश्वत काल तक अनंत काल तक जो रहने वाले हैं, यानी सिद्ध भगवान के रूप में जिनका अस्तित्व जिनकी सत्ता अनंत काल तक रहेगी, ऐसे सिद्ध भगवान कहाँ विराजमान रहते हैं? अर्ध चंद्राकार सिद्ध शिला पर जो लोक के अग्रभाग पर है, अंतिम लोक का जो घनवात वाले घनोदधिवात वाले तनुवात वाले है तो अंतिम तनुवात वाले का स्पर्श करते हुए और लोक के अंदर ही रहती है सिद्ध शिला, लोक के ऊपर कभी नहीं रहती। कहीं कहीं 3 लोक के ऊपर टॉप पे जाके भगवान विराजमान कर दिया, ये गलत हो गया क्योंकि 3 लोक के बाहर तो अलोका काश है, और अलोकाकाश में कुछ रहता ही नहीं है। आकाश आकाश के अलावा किसी भी द्रव्य को ठहरने की जाने की कोई अनुमति नहीं है, किसी प्रकार की स्थिति नहीं है वहां पर, क्योंकि उसके बाहर जो है लोक के बाहर केवल आकाश मात्र है, बाकी द्रव्यों का अवकाश नहीं होता। तो नित्य काल तक वे अर्ध चंद्राकार सिद्ध शिला पर विराजमान रहते हैं। अष्ट गुणा कृतकृत्या और आठ गुणों को प्राप्त कर लेते हैं तो कृतकृत्य हो जाते हैं। कृतकृत्य माने क्या होता है? जब किसी की इच्छाएं पूरी हो जाती हैं तो कहते हैं हम तो कृतकृत्य हो गए, है ना। पूर्ण रूप से कृतकृत्य होना अर्थात कोई कार्य करना शेष ही नहीं रहा, सारे कार्यों को पूर्ण कर लिया, सारे मनोवांछित पूर्ण होकर के एकदम स्पष्ट सिद्धात्मा के रूप में जो विराजमान हो गए। ऐसे लोयज्ञ निवासिनो सिद्धा, लोक के अग्रभाग में निवास करने वाले हैं वे सिद्ध कहलाते हैं और वे गुणस्थानातीत होते हैं। अब चौदहों गुणस्थान से रहित वे हो गए, कोई भी गुणस्थान उनके नहीं होता है। तो मूल बात यह है कि जब संसार अवस्था का विनाश हो जाता है, यानी कर्म रूपी बीज जब जल जाता है, तो आत्मा पूर्ण कृतकृत्य होकर के और सिद्धात्मा का स्वरूप धारण कर लेता है। तो संसार अवस्था का विनाश हो जाने पर भी आत्म द्रव्य का, शुद्धात्म द्रव्य का, जीव द्रव्य का कभी भी विनाश नहीं होता, क्योंकि जीव माने भगवान आत्मा, उसका कभी भी विनाश नहीं होता, उसका अस्तित्व सदा रहता है। किंतु वह अस्तित्व किस रूप में रहता है वो इस गाथा के द्वारा बताया कि वे आठों प्रकार के कर्म से रहित हो गए, शीतीभूत एकदम शीतल गुणों से समन्वित हो गए, शांत हो गए, शांतिमय स्वरूप उनका हो गया, निरंजन हो गए, नित्य हो गए और आठ गुणों से समन्वित हो गए। वे कृतकृत्य हैं और लोक के अग्रभाग पर निवास करने वाले हैं। ऐसे सिद्ध भगवान को बारंबार नमस्कार किया है। तो भव्यात्माओं, आप सब लोगों को ये अध्याय मंगलाचरण के साथ में 20 प्ररूपणाओं के नाम और प्रथम प्ररूपणा गुणस्थान के 14 भेदों का विस्तार से वर्णन करने वाली ये अध्याय रही है। अब इसका आप अच्छे से अध्ययन करना और कल के दिन आप इसके पश्चात जो इस अध्याय का सार दिया है पूज्य ज्ञानमती माता ने 14 गुणस्थान नाम से, इसमें सारे गुणस्थानों के लक्षण बता करके और सुंदर सा पूरी अध्याय का सार दे दिया, जैसे दूध में से निकला हुआ मक्खन। तो इसको आज आप अच्छे से अध्ययन करना। कल आपकी प्रथम अध्याय के अध्ययन का टेस्ट होगा और उसके बाद हम दूसरी अध्याय जीव समास की शुरू करेंगे। तो आपको अब ये अंतिम 26वें श्लोक में एक विशेष बात ये समझना है कि जो कर्म आठ हैं, ये आठ कर्म प्रत्येक संसारी आत्मा के साथ लगे रहते हैं और आत्मा के अंदर जो छिपे हुए आठ गुण हैं उन गुणों का घात करते हैं। नीचे इसी 22 नंबर के पेज पर बहुत सुंदर सी गाथा दी है कि इन कर्मों का संबंध सर्वथा छूट जाने पर आत्मा के वे गुण प्रकट हो जाते हैं, जो गाथा के अंदर आठ गुण नाम से विशेषण बताया गया है। अट्ट भी है, कम भी है। तो कौन सा कर्म किस गुण को घातता है, कौन सा गुण किस कर्म के नाश से प्रकट होता है ये भी है, और कौन सा कर्म किस गुण का घात करता है, नाश करता है, किसके कारण कौन सा गुण प्रकट नहीं होने पाता, ये दो गाथाओं के द्वारा समझना है। मोहो खाइए सम्मम केवल नाणम च केवलालोयम,
केवल नाणम च केवलालोयम,
अणिदु आवरण दुगम,
अणिदु आवरण दुगम, ಯೋಗಂ
ಹಣಂತಿ ವೀರ್ಯಂ ಹಣೇ ದಿವಿ ಗಂತು
ಹಣಂತ ವೀರ್ಯಂ ಹಣೇ ದಿವಿ ಗಂತು
ಸುಮಂ ಚ ನಾಮ ಕಮ್ಮಂ
ಸುಮಂ ಚ ನಾಮ ಕಮ್ಮಂ
ಹಣೇದಿ ಆವು ಹಣೇದಿ ಅವಗಹಣಂ
ಹಣೇದಿ ಆವು ಹಣೇದಿ ಅವಗಹಣಂ
ಅಗುರು ಲಘುಗಂ ಗೋದಂ
ಅಗುರು ಲಘುಗಂ ಗೋದಂ
ಅಗುರು ಲಘುಗಂ ಗೋದಂ
ಅಗುರು ಲಘುಗಂ ಗೋದಂ
ಅಬ್ಬಾವಾಹಂ ಹಣೇ ದಿವೇಯಣಿಯಂ
ಅಬ್ಬಾವಾಹಂ ಹಣೇ ದಿವೇಯಣಿಯಂ
ಸಬ್ಸೆ ಪೆಹಲೆ ಮೋಹಿನಿ ಕರ್ಮ ಕೋ ಲಿಯಾ ಕ್ಯೂಂಕಿ ಆಠೋ ಕರ್ಮೋ ಕಾ ರಾಜಾ ಹೈ ಮೋಹಿನಿ ಕರ್ಮ ಜಿಸ್ಸೆ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಸಾರೇ ಕೆ ಸಾರೇ ಗುಣ ವಿನಷ್ಟ ಹೋ ಜಾತೆ ಹೈ ನಷ್ಟ ಹೋ ಜಾತೆ ಹೈ ಪ್ರಗಟ ನಹೀ ಹೋ ಪಾತೆ ತೋ ಮೋಹೋ ಖಾಯೆ ಸಮ್ಮಂ ಮೋಹಿನಿ ಕರ್ಮ ಕೆ ಕಾರಣ ಛಾಯಿಕ ಸಮ್ಯಕ್ತ ಕಾ ಘಾತ ಹೋತಾ ಹೈ ಛಾಯಿಕ ಸಮ್ಯಕ್ತ ನಹೀ ಪ್ರಗಟ ಹೋ ಪಾತಾ ದರ್ಶನ ಮೋಹಿನಿ ಕರ್ಮ ಕಿ ಜಬ್ ಸಾತ್ ಪ್ರಕೃತಿಯೋ ಕಾ ಪೂರಿ ತರಹ ಸೆ ನಾಶ ಹೋ ಜಾತಾ ಹೈ ತಬ್ ಛಾಯಿಕ ಸಮ್ಯಕ್ತ ಪ್ರಗಟ ಹೋತಾ ಹೈ ತೋ ಮೋಹಿನಿ ಕರ್ಮ ಛಾಯಿಕ ಸಮ್ಯಕ್ತ ಕಾ ಘಾತ ಕರ್ತಾ ಹೈ ಔರ್ ಕೇವಲ ನಾನಂ ಚ ಕೇವಲ ಲೋಯಂ ಔರ್ ಕೇವಲ ಜ್ಞಾನ ಕಾ ಘಾತ ಕೌನ್ ಕರ್ತಾ ಹೈ ಜ್ಞಾನಾವರಣ ಜ್ಞಾನಾವರಣ ಕರ್ಮ ಔರ್ ದರ್ಶನಾವರಣ ಕರ್ಮ ಕೇವಲ ದರ್ಶನ ಕಾ ಘಾತ ಕರ್ತೆ ಹೈ ತೋ ಕೇವಲ ನಾನಂ ಚ ಲಿಯಾ ಕೇವಲ ಜ್ಞಾನ ಔರ್ ಕೇವಲ ದರ್ಶನ ಕೋ ಢಕ್ತೆ ಹೈ ये दोनों पर आवरण डाल देते हैं यानी कि ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म केवल ज्ञान और केवल दर्शन को प्रकट नहीं होने देते हैं और अनंत वीर्यम हणेदि विघ्नम तु विघ्नम माने अंतराय विघ्नम माने विघ्नम विघ्न माने अंतराय तो अंतराय कर्म जो है अनंत वीर्यम अनंत वीर्य आत्मा की अनंत शक्ति का घात करता है जैसे जैसे अंतराय पड़ता है तो आत्मा को किसी चीज का लाभ दान लाभ भोग उपभोग वीर्य ये अंतराय कर्म के कारण ये गुण प्रकट नहीं हो पाते हैं और जब अंतराय कर्म नष्ट होता है तो क्षायिक दान क्षायिक लाभ क्षायिक भोग क्षायिक उपभोग क्षायिक वीर ये हमेशा के लिए आत्मा में प्रकट हो जाते हैं इसके पहले कहा हणदेव आवरण दुगम तो केवल नाणम च केवला लोयम ये कहा कि दो आवरण कर्म जो हैं ज्ञानावरण दर्शनावरण इन दोनों के कारण केवल ज्ञान और केवल दर्शन प्रकट नहीं हो पाता समझे जीवन प्रकाश सामने आओ सामने आके बैठो हाँ तो यहां बताते हैं कि आठ कर्म है और आठ कर्म कौन कौन से गुण का घात करता है तो मोहिनि कर्म क्षायिक सम्यक्त का घात करता है मैंने उसे प्रकट नहीं होने देता और केवल ज्ञानावरण कर्म केवल ज्ञान नहीं प्रकट होने देता दर्शनावरण कर्म केवल दर्शन को नहीं प्रकट होने देता है और अंतराय कर्म अनंत वीर्य अनंत शक्ति को नहीं प्रकट होने देता ये तो हुई चार घातिया कर्म अब आगे देखिए सुमम च नाम कम्मम और नाम कर्म जो है सूक्ष्मत्व गुण को प्रकट नहीं होने देता है हणेदि आउ हणेदि अवगहणम और आयु कर्म जो है वो अवगाहना गुण को हनन करता है माने नाश करता है अगुरु लहुगम गोदम और गोत्र कर्म के उदय से गोत्र कर्म के नाश से यानी गोत्र कर्म जो है वह अगुरु लघु गुण का विनाश करता है माने गोत्र कर्म जब नष्ट होता है तो अगुरु लघु गुण प्रकट होता है और अब्बावाहम हणेदि वेदनीयम और वेदनीय कर्म अव्यावाद गुण को प्रकट नहीं होने देता अव्यावाद गुण का नाश करता है इस प्रकार से इसके अंदर बताया कि आठ कर्म हैं जो आठ गुणों को जो स्वाभाविक गुण आत्मा के हैं क्षायिक गुण है आत्मा के उनका घात करते हैं माने एक एक कर्म नष्ट हुआ तब एक एक गुण प्रकट हुआ और जब सिद्ध बने तो वहां आठ के आठ कर्म नष्ट हो गए तो वो आठ कर्मों के नष्ट होने के कारण आठ गुणों को प्रकट करके और आठवीं पृथ्वी सिद्ध शिला को अष्टम पृथ्वी भी कह देते हैं अष्टम पृथ्वी सिद्ध शिला को ईशत प्रागभारा नाम की अष्टम पृथ्वी है, उसमें जा करके और विराजमान हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आपका ये पहला अध्याय संपूर्ण हुआ है। अब आप इसका अध्ययन कीजिएगा, इसमें 22, 23, 24, 25 और 26, 27 पेज तक इन 5-6 पेजों में पूरे इस अध्याय का सार पूज्य माता ने दिया है। ये बहुत विशेषता रहती है ज्ञानमती माता की कृतियों की कि जो भी ग्रंथ लिखती हैं तो उसके बाद में उसका सार, एक एक अध्याय का सार जरूर दे देती हैं कि बाद में आप उस अध्याय के मर्म को समझ सकें। तो आप इसको पढ़िएगा और कल हम आपका टेस्ट लेंगे प्रथम अध्याय का, तब आपको अच्छे से इसका उत्तर बताना रहेगा, क्योंकि 30 दिसंबर को हमने परीक्षा रखी है। अभी आपकी दो अध्याय और चलेंगी जिसके अंदर केवल 10 गाथाएं और हैं, इसमें 26 गाथाएं हैं पहले अध्याय में और उसके बाद में 7 गाथाएं जीव समास अधिकार में हैं और 3 गाथा केवल पर्याप्ति अधिकार में हैं। तो हम 36 गाथा तक आपकी 30 दिसंबर को परीक्षा लेंगे, तब तक आपको अध्ययन करना है और आज इस अध्याय के सार को पढ़ करके कल आपको अच्छे से टेस्ट देना है। तो अब हम आगे चलते हैं व्याकरण की ओर, संस्कृत व्याकरण। कितने लोगों को समझ में आ रहा है, मैं इस आपको कहती हूँ कि ये प्रेरणा है कि आप लोग व्हाट्सएप के माध्यम से थोड़ा सा बताइए जरूर कि संस्कृत व्याकरण का ये प्रारंभिक ज्ञान है आपको अच्छे से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। समझ में आता है तो आपका बेस आगे बनता चला जाएगा, और नहीं समझ में आता है तो आपको और अच्छी तरह से समझाया जाएगा। अभी प्रारंभ में इसमें केवल संज्ञाएं चल रही हैं, उसमें किसी प्रकार का कोई दिमाग लगाना नहीं, कोई समझने की बात नहीं है, केवल किसकी क्या संज्ञा है ये आपको बताया गया है। सरस्वती